हेलो एवरीवन, इट्स जीडी हियर। आज हम लोग ग्रुप 15 पढ़ेंगे पी ब्लॉक का। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लिंक में जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जाके उससे आप जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लें, उसे प्रिंट कर लें या फिर अपने फ़ोन पे पीडीएफ पे साइड में देखते रहें और फिर सुने, क्योंकि मैं उन्हीं नोट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अच्छा रहेगा अगर आप उन्हें साथ साथ पढ़ते जाएँ ताकि आपको वो याद होते जाएँ। ये नोट्स पूरी तरह एनसीईआरटी से डिराइव्ड है, मैंने कंडेंस करके बनाए हैं और फिर इसमें कहीं कहीं पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्ट डालने के लिए बस, ठीक है। कोई ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे इन जनरल ये नीट और जेई मेंस के लिए परफेक्ट है और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द पॉडकास्ट एंड लेट्स स्टडी केमिस्ट्री। तो हम लोग ग्रुप 15 से शुरू करते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ एंड मस्कोवियम आर टिपिकल मेटल्स। ध्यान रखने का 6 एलिमेंट जो है, पहला 2 नॉन मेटल्स है, बीच का 2 आर्सेनिक और एंटीमोनी मेटलॉइड्स है और बिस्मथ मस्कोवियम प्योर मेटल है, टिपिकल मेटल्स। अकरेंस में यही है कि नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिलता है, चाइल्ड सॉल्पीटर और इंडियन सॉल्पीटर, ठीक है। और ऊपर से डाइनाइट्रोजन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिलता है 78% बाय वॉल्यूम। फॉस्फोरस एपेटाइट फैमिली में मिलता है, जिसमें फ्लोर एपेटाइट एक है हम लोग के पास, CA9PO4H6.CH2, ये जनरल फैमिली एपेटाइट का। इसके अंदर एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड, ये तीनों हो सकता है। CA9PO4H6.CH2 ये फॉस्फोप्रोटीन्स के फॉर्म में मिल्क और एग में भी मिल जाता है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये तीनों सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है। ये बात ध्यान रखने का है, इसका ये मतलब है कि सल्फर और ये तीन मेटल आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ साथ में मिलता है हमेशा। एटॉमिक और आयनिक रेडाई का बात करें तो कोवेलेंट और आयनिक दोनों ही रेडाई डाउन द ग्रुप बढ़ता है, काफ़ी ऑब्वियस है, शेल्स बढ़ रहा है इसीलिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और ये बात हम लोग को याद रखने का है कि ग्रुप 15 का बहुत ज़्यादा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 से। क्यों? कि ग्रुप 15 में हाफ फिल इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाफ फिल पी शेल होता है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप घटता है क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है जो कि बाकी सब सॉलिड्स है, याद रखने का बात। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मस्कोबियम सब सॉलिड्स हैं, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप पता है हमें। एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ऑल एलिमेंट शो एलोट्रोपी। नाइट्रोजन एलोट्रोपी नहीं दिखा पाता, क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है, उसके लोन पेयर के कारण रिपल्शन होता है उसके अंदर, तो NN बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं होता, सिंगल बॉन्ड NN सिंगल बॉन्ड बहुत लंबा चेन में स्टेबल नहीं होगा, तो एलोट्रोपी नहीं दिखा पाता। जबकि बाकी सब फॉस्फोरस से लेके मस्कोबियम तक, हम मस्कोबियम को नहीं भी लें एक बार के लिए क्योंकि वो रेडियोएक्टिव है, तो बिस्मथ तक तो सब एलोट्रोपी दिखाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, ये एलिमेंट्स का ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में एक एक्सेप्शन है कि जो बीड़ी है यानी बिस्मथ है वो एंटीमनी के पहले आता है, ये याद रखने का। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ये होगा, नाइट्रोजन लेस देन फॉस्फोरस लेस देन आर्सेनिक लेस देन बिस्मथ लेस देन एंटीमनी, तो बिस्मथ और एंटीमनी में उल्टा पल्टी हो गया, ठीक है। ग्रुप याद करने का तरीका पता है, नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, जल्दी याद होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस बिस्मथ एंटीमनी आर्सेनिक, ये और ये एक्सेप्शन, इसमें तुम्हारा आर्सेनिक सबसे आगे चला गया, ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट वाला है, बस आर्सेनिक सबसे आगे चला गया और हम लोग को एक्सेप्शन पता है कि एंटीमनी का बिस्मथ से ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी ऑफ -3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा उसमें नेगेटिव चार्ज, उतना ही अनस्टेबल होगा, तो -3 का जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप घट जाएगा, +3 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट सबको पता है कि अगर जो बड़े वाले शेल्स होते हैं उनके अंदर जो F ऑर्बिटल के कारण जो शील्डिंग होता है बहुत कम होता है, तो जो लास्ट का जो 6s का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है और फिर वो अलग नहीं होना चाहता, वो आयनाइज नहीं होता, तो इसीलिए बिस्मथ में जैसे कि +3 +5 से ज़्यादा स्टेबल है, थैलियम में +1 +3 से ज़्यादा स्टेबल है। तो ये सब एग्जांपल्स है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, +3 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है क्योंकि उसमें इनर पेयर इफेक्ट लग रहा है, और प्लस वाई का घट रहा है क्योंकि इनर पेयर इफेक्ट में वो लास्ट का 2 6s का इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और फिर बिस्मथ का सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो कि प्लस 5 दिखाता है, जो कि बिस्मथ फ्लोराइड, 5 फ्लोरीन का एटम से Bi प्लस 5, ठीक। नाइट्रोजन भी प्लस 5 दिखा सकता है, अलग लगता है लोगों की नॉन मेटल है प्लस 5 दिखा, लेकिन दिखाता है N2O5 के अंदर, ठीक है। N2O5 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, याद रखना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। Mg3Bi2 में मैग्नीशियम बिस्मथाइड में Bi माइनस 3 दिखाता है। हम लोग पढ़े थे ऊपर कि Bi ये माइनस 3 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिस्मथ माइनस 3 नहीं दिखाएगा, वो दिखाता है मैग्नीशियम बिस्मथाइड में, ठीक है। NF5 एग्जिस्ट नहीं करता, डो नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता इसीलिए, ठीक। नाइट्रोजन शोज प्लस 1 इन H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें नाइट्रोजन अपना प्लस 1 का स्टेट दिखाता है हाइपोनाइट्रस एसिड में। बट याद रखने का प्लस 1 भी बहुत मतलब पूछा जा सकता है अचानक से, तो ये एग्जाम्पल है। इन नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम प्लस 1 टू प्लस 4 टेंड टू डिसप्रॉप इन एसिड सॉल्यूशन। जितना भी तुम्हारा नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीएसिड्स का, वो सब डिसप्रॉप करने का टेंडेंसी रखता है। और किसके अंदर डिसप्रॉप करता है? प्लस 5 वाले स्टेट के अंदर, प्लस 2 वाले स्टेट के अंदर, ठीक है। डिसप्रॉप करता है नाइट्रोजन का सारा स्टेट प्लस 1 से लेकर प्लस 4 तक डिसप्रॉप करने का टेंडेंसी रखता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है 3HNO2 डिकम्पोजेस टू HNO3 प्लस वाटर प्लस NO, ठीक है। इन फॉस्फोरस नियरली ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रॉप इनटू प्लस 5 एंड माइनस 3 बोथ इन एल्कलियन एसिड। नाइट्रोजन जो डिस्प्रॉप करता था बस एसिड में करता था, जबकि फॉस्फोरस जो है वो एसिड और एल्कली दोनों में डिस्प्रॉप करेगा, ठीक है। H3PO3 डिस्प्रॉप तुम्हारा कर रहा है तो वो बन रहा है H3PO4 प्लस PS3 प्लस 5 और माइनस 3 का स्टेट में डिस्प्रॉप हो गया। बैलेंसिंग अपन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बस ये बात ध्यान रखना है कि प्लस 5 और माइनस 3 में टूटेगा फॉस्फोरस का सारा ऑक्सीडेशन स्टेट, नियरली ऑल सारा ऑक्सीएसिड्स का इसी में टूटेगा। H3PO2 भी H3PO4 और PS3 में टूट रहा है, लेकिन जो फॉस्फोरस प्योर फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस जो है एलिमेंटल फॉस्फोरस, अगर उसको हम लोग एल्कली NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फॉस्फीन मिलता है PS3 प्लस NaH2PO2। तो PS3 यहाँ पे वो लॉ फॉलो नहीं हो रहा तुम्हारा प्लस 5 और माइनस 3 वाला, माइनस 3 तो है लेकिन प्लस 5 नहीं है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन है ये और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। P4 में जब हम लोग NaOH डालते हैं तो क्या बनता है? PS3 और NaH2PO2, ठीक है। डिस्प्रॉप टेंडेंसी हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का प्लस 3 का डिस्प्रॉप टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, क्यों? अब हम लोग ऊपर पढ़े थे कि स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 3 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो नाइट्रोजन का ऑब्वियसली सबसे कम होगा प्लस 3 का स्टेबिलिटी, इसलिए वो डिस्प्रॉप करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। तो डिस्प्रॉप का ऑर्डर होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, विच इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन का 4 है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, 2s का एक ऑर्बिटल और 2p का 3 ऑर्बिटल, मिला के 4 उसका कोवेलेंसी, जबकि बाकियों का मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 है क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल है, वो एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम लोग एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे, नाइट्रोजन क्या क्या अजीब बिहेवियर शो करता है। तो पहला चीज़ तो ये है कि N ट्रिपल बॉन्ड N एग्जिस्ट करता है, लेकिन P ट्रिपल बॉन्ड P या फिर कोई भी ग्रुप 15 का मेटल अपने आप ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता एक दूसरे के साथ, क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस में जो है ओवरलैपिंग P ऑर्बिटल को उतना इफेक्टिवली हो ही नहीं पाता, उसका बॉन्ड लेंथ इतना ज़्यादा है कि P ऑर्बिटल ओवरलैप ही नहीं कर पाता और पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, इसीलिए वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, जबकि नाइट्रोजन में P ऑर्बिटल रिलेटिवली काफ़ी क्लोज होता है, ओवरलैपिंग अच्छा से हो जाता है। ये रीजन लिखा हुआ है कि हैवियर एलिमेंट्स डोंट फॉर्म पी पाई एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सो लार्ज एंड डिफ्यूज्ड दैट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा नहीं तो बॉन्ड कहाँ से बनेगा। अगला कि N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब N ट्रिपल बॉन्ड्स विद N, N N के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाता है, आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड बनाता है, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ध्यान रखने के सब कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है। लेकिन एक बिस्मथ है जो कि मेटालिक बॉन्ड्स बनाता है, बिस्मथ मेटालिक बॉन्ड्स बनाता है, ये बात का ध्यान रखना होगा कि बिस्मथ मेटालिक बॉन्ड्स बनाता है। फॉर सिंगल बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है, ये काफ़ी पूछे जाने वाला सवाल है। नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो फॉस्फोरस से कम है, जबकि उल्टा होना चाहिए था, लगता है कि 2p 2p है ओवरलैपिंग अच्छा है, होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, जो लोन पेयर है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो उसका लोन पेयर है, उसके कारण उसमें रिपल्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक अजीब सा बात हो जाता है कि बॉन्ड लेंथ भी फॉस्फोरस का ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी फॉस्फोरस का ज़्यादा है। ये बात एक्सेप्शन की तरह याद रख लो, एक्सप्लेनेशन के साथ भी समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड लेंथ, फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड लेंथ से कम होता है, ऐसे कम होता है और से वीक भी होता है, वीक भी होता है। नाइट्रोजन पी पाई डी पाई बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो कहाँ से करेगा, तो नहीं कर सकता। लेकिन बाकी जो है मेटल्स, बाकी जो एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, वो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, R3PO और R3P डबल बॉन्ड CH2 जैसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि बाकी कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ये चीज़ नहीं कर सकता, वो डी ऑर्बिटल यूज़ नहीं कर सकता। तो अगले पेज पे आते हैं, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई विद ट्रांजिशन मेटल्स। तो वो लोग ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, लिगेंड्स की तरह ऐड कर सकता है, जैसे कि हम लोग के पास एग्जांपल है ट्राईथाइल फॉस्फीन और ट्राईफिनाइल आर्शाइन जैसे लिगेंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अब ये लोग ट्रांजिशन मेटल से मिलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, अब हम लोग रिएक्टिविटी देखते हैं, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। तो सब जो है EH3 टाइप ही कंपाउंड्स बनाते हैं, EH5 नहीं बनता, जहाँ पे E मतलब एलिमेंट्स है ग्रुप 15 का, EH5 नहीं बन सकता क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपना डी ऑर्बिटल नेगेटिव स्टेट में यूज़ नहीं कर सकता। मतलब अगर उसके पास उसके एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि होगा क्योंकि वो हाइड्राइड बना रहा है, तो वो अपना डी ऑर्बिटल यूज़ ही नहीं कर सकता, उसको पी ऑर्बिटल तक से ही काम चलाना होगा, पी ऑर्बिटल से ही बॉन्डिंग करना होगा, तो वो EH3 टाइप ही बनाएगा। तो इसमें स्टेबिलिटी हम लोग, अब पहले हम लोग स्टेबिलिटी पढ़े थे कि -3 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटता है, तो इसीलिए कंपाउंड्स NH3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जो कि BIS3 बहुत कम स्टेबल है कंपैरेटिवली। अब और एक बात आया कि स्टेबिलिटी का जस्ट रिवर्स है रिड्यूसिंग नेचर, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा, कम रिड्यूसिंग होगा, तो इसीलिए BIS3 का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा है और इससे सबसे कम है। मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का सबसे ज़्यादा होता है एच बॉन्डिंग के कारण, एक एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, याद रखना है। एच बॉन्डिंग के कारण NH3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे आगे चल जाता है, यहाँ तक कि एंटीमनी के भी आगे चल जाता है। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में भी इसका ज़्यादा है क्योंकि एच बॉन्डिंग है सिमिलरली, लेकिन अब एंटीमनी के आगे नहीं जा पाता। इसका ये कारण है कि जब लिक्विड फॉर्म में अमोनिया होता है तो उसके अंदर फ्लिपिंग होता है, तो फ्लिपिंग के कारण एच बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो घट जाता है, रहता है लेकिन घट जाता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में ये एक्सेप्शन नहीं आया क्योंकि उसमें फ्लिपिंग नहीं हो पाता, तो मतलब फ्लिपिंग का बात ही नहीं है सॉलिड स्टेट में, तो इसीलिए वो डायरेक्ट एच बॉन्डिंग के कारण टॉप पे था, लेकिन इस बार उसमें फ्लिपिंग भी हो रहा है तो सेकंड पे आ गया, एंटीमनी भी पीछे आ गया, तो एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है एक। ठीक है, अगला है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज अमोनिया शोज एच बॉन्डिंग इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स बोथ। जो बोला अभी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या स्मॉल साइज है, तो इसलिए सॉलिड लिक्विड दोनों स्टेट में एच बॉन्डिंग दिखाता है। ध्यान रखने की बात है कि फ्लिपिंग बस लिक्विड में होगा, सॉलिड में फ्लिपिंग नहीं होगा। बेसिक नेचर का ऑर्डर जो है वही है जो रिड्यूसिंग नेचर का, एकदम उल्टा होना ही है। NH3, PS3, ESS3, ये बात NCERT में दिया हुआ है कि SBS3 और BIS3 का लगभग बराबर टाइप से होता है, मतलब दे कैन बी नियरली कंपेरेबल, तो इसीलिए SBS3 और BIS3 लगभग बराबर है। नाउ रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, E2O3 और E2O5 दो टाइप का ऑक्साइड्स बनता है, E2O3 और E2O5। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, फाई बढ़ता है, फाई मतलब पोलराइजिंग कैरेक्टर, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज डेंसिटी, जो बोलो फाई ये होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ने के कारण फजान्स रूल के अनुसार कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा किसी भी ऑक्साइड का। तो इसीलिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसा जो है E2O3 में बात करेंगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एसिडिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, आर्सेनिक एंटीमनी एम्फोटेरिक मेटलॉइड्स है इसीलिए, और बिस्मथ बेसिक, बिस्मथ का जो ऑक्साइड है वो बेसिक होता है। ठीक है, क्योंकि वो मेटल है। देखो एक ट्रिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का, जितने भी एलिमेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं वो याद करने का एक ट्रिक है, ऐसे सभी जनाबे अली गए टीना लेने, ऐसे सभी जनाबे अली गए टीना लेने, आर्सेनिक एंटीमनी जिंक बेरिलियम एल्यूमिनियम गैलियम टिन और लेड, ये सारे एलिमेंट्स के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सब एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। तो याद करने का तरीका, ऐसे सभी जनाबे अली गए टीना लेने, ठीक है। रिएक्टिविटी विद हैलाइड्स, कोवेलेंट करेक्टर EX5 का ज़्यादा होता है EX3 से, क्यों अभी ऊपर डिस्कस किया। कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +5 इज ग्रेटर देन +3, तो कोवेलेंट करेक्टर EX5 का ज़्यादा होता है। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं फिर से, NF3 इज मोर स्टेबल देन NCl3 NBr3 एंड I3। इनफैक्ट NF3 इज द ओनली स्टेबल नाइट्रोजन फ्लोराइड, बाकी सब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, और Ni3 यहाँ तक कि शॉक सेंसिटिव होता है, हिलाओगे फट जाएगा। तो NCl3 NBr3 Ni3 ये तीनों एक्सप्लोजिव हैं, सिर्फ NF3 एक स्टेबल है, ठीक है। कोई बात याद रखने का है, जो ट्राई हैलाइड्स हैं मतलब EF3 टाइप के हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स में BiF3 के अलावा सारे के सारे कोवेलेंट होते हैं, सारे के सारे हैलाइड्स कोवेलेंट है। BiF3 से आयनिक हैलाइड, बिस्मत जानती हैं मेटल है, नॉन मेटल है, आयनिक लिंकेज बनता है दोनों के बीच में, तो ये एक ट्राई हैलाइड, यही एक कोवेलेंट है, बाकी सब कोवेलेंट है, यही एक आयनिक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, सारे जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं मेटल्स के साथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रिएक्ट करेंगे, कुछ और पॉसिबल नहीं है, -3 ही बनेगा, और यहाँ तक कि एंटीमनी और बिस्मत भी -3 ही दिखाते हैं, भले ही अनस्टेबल हो लेकिन मेटल्स के साथ वही एग्जिस्ट करता है जो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। Zn3SP2 एंड Mg3Bi2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डाइनाइट्रोजन, इसका डाइनाइट्रोजन के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन में यही है कि पहले तो हम लोग एयर से लिक्विफैक्शन कर सकते हैं, लिक्विफाइड एयर यूज़ कर सकते हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो लिक्विड N2 जो है वो पहले डिस्टिल आउट हो जाएगा और पीछे ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में बच जाएगा, मतलब नाइट्रोजन तुम्हारे डिस्टिलर के बाहर निकल जाएगा पहले और O2 वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ही बच जाएगा, ठीक है। इन लैबोरेटरी हम लोग ऑब्वियसली लिक्विफैक्शन करेंगे नहीं लैबोरेटरी के अंदर, लैबोरेटरी के अंदर बनाने का तरीका है कि अमोनियम क्लोराइड में तुम सोडियम नाइट्राइड डालो, अमोनियम क्लोराइड में सोडियम नाइट्राइड डालेंगे तो नाइट्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा। असल में पहले बनता है अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्राइड हीट के अंदर डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस बनाता है, वो स्टेप लिखा नहीं जाता है अलग बात है, लेकिन पहले हम लोग इंटरमीडिएट अगर देखेंगे तो अमोनियम नाइट्राइड बनेगा, वो हीट करने पे वो डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस दे देगा, नाइट्रोजन गैस वाटर और NaCl तुम्हारे प्रोडक्ट्स है, तो एक तरीका हुआ। हाँ, इसके अंदर ये भी क्या है कि इसमें स्मॉल अमाउंट्स में NO और HNO3 भी बनता है, स्मॉल अमाउंट्स में इनको हटाया जा सकता है, इसके अंदर हम लोग H2SO4 अगर पास कर दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के तो इसे हटा दिया जाएगा, ये दोनों जो इम्प्योरिटीज ही हट जाएंगे। तीसरा तरीका प्रिपेयर करने का, अमोनियम डाइक्रोमेट को NH4O2CO2O7 ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, अगर हम इसे हीट करते हैं, ये एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है क्योंकि इसमें यही है जो कि जो साइंस लैब्स में हम वॉल्केनोज या एग्जीबिशंस में देखते हैं उसमें यही रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया जाता है, नाइट्रोजन गैस निकलता है, H2O निकलता है, CR2O3 जो कि ग्रीनिश ब्लैक टाइप का पाउडर होता है वो निकलता है। ये एकमात्र ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है, ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एकमात्र डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है, नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है और केमिकल वॉल्केनो में यूज़ होता है। चौथा तरीका बहुत ही प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए, बेरियम एजाइड को हम लोग हीट करेंगे तो डिकम्पोज कर जाएगा बेरियम और नाइट्रोजन गैस में, या फिर सोडियम एजाइड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा सोडियम और नाइट्रोजन में। तो ये भी एक चार तरीके हम लोग के पास, लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, सेकेंड अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड, तीसरा केमिकल वॉल्केनो हम लोग का अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करना, चौथा ये है कि एजाइड्स को मेटल एजाइड्स को हम लोग हीट करें तो बहुत प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन हमें मिल जाएगा। अब प्रॉपर्टीज़ में नाइट्रोजन एक कलरलेस गैस है पता ही है, ये बात एक यहाँ पे याद रखने का है कि O2 जो है वो लिक्विड फॉर्म में ब्लू होता है क्योंकि O2 पैरामैग्नेटिक है और नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में कलरलेस होता है, नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में कलरलेस होता है जबकि ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में ब्लू होता है, क्यों, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है तो कलर आएगा, नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक नहीं, नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है, मोटी से पता चलता है, मॉलिक्यूलर बैटल थ्योरी से हमें बात पता है कि नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है तो उसके अंदर कलर नहीं आएगा। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप है, एलोट्रोप नहीं है, एलोट्रोप ही नाइट्रोजन शो नहीं करता है, आइसोटोप है, ठीक है। 14N और 15N, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है, नंबर प्रोटॉन सेम है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, O2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन कंपेयर टू नाइट्रोजन गैस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है इन मोस्ट केसेस। तो ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल देन नाइट्रोजन। अब बात करें कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन का, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन से असल में एन 3- बनाना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डिमांड करता है, क्योंकि उसमें आपको 3 बॉन्ड्स तोड़ने हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन के डालने के बाद अगले इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्शन फेस करेगा वो। तो इसीलिए नाइट्रोजन को असाइड फॉर्म में लाने के लिए, N3- फॉर्म में लाने के लिए, नाइट्राइड फॉर्म्स में लाने के लिए बहुत कम ही मेटल्स हैं जो कि इतना लैटिस एनर्जी प्रोवाइड कर पाएंगे कि ये रिएक्शन फिजिबल बने। उसमें बस लीथियम है, फर्स्ट ग्रुप में तो बस लीथियम है जो कि ये कर सकता है, सेकेंड ग्रुप के सारे मेटल्स ये कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ लीथियम ही है जो नाइट्रोजन के साथ Li3N बना सकता है, बाकी कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है। एक और बात याद रखने का कि थर्ड ग्रुप में जो AlN है, AlN एक कोवेलेंट सॉलिड है, आयनिक लग सकता है क्योंकि एल्यूमिनियम है, NCERT के टेबल में दिया हुआ है, ये कोवेलेंट सॉलिड है, सॉलिड चैप्टर में ही दिया हुआ है, AlN इज अ कोवेलेंट सॉलिड, ये बात याद रखने का। अब नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से, तो N2 और O2 को बहुत ही हाई टेम्परेचर, मतलब पागलों जैसा हाई टेम्परेचर 2000 केल्विन, यानी कि जो लाइटनिंग होता है जिस तरह, लगभग उसी तरह का टेम्परेचर N2 प्लस O2 में अगर देंगे तब जाके NO गैस बनता है, इतनी हाई टेम्परेचर पे NO गैस बनता है, वरना नहीं बनता। अब यूजेस क्या है नाइट्रोजन का, यूज़ है अमोनिया बनाने में, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, अमोनिया काफ़ी काम की गैस है, बहुत जगह काम आता है फर्टिलाइजर वगैरह में, वहाँ काम है। कैल्शियम साइनामाइड बनाने में, कैल्शियम साइनामाइड असल में CaCN2 और नाइट्रोलियम, इसको नाइट्रोलियम भी बोलते हैं, ये फर्टिलाइजर की तरह ऐड करता है। इसमें जब हम लोग इसको बनाने का तरीका ये है कि कैल्शियम कार्बाइड में CaC2 में नाइट्रोजन डालेंगे। हाँ, तो कैल्शियम कार्बाइड में अगर जब नाइट्रोजन डालेंगे हम लोग तो CaCN2 बनेगा, कैल्शियम साइनामाइड, ये कैल्शियम साइनामाइड, इसमें जब और ये और कार्बन बनेगा, जब कैल्शियम साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, पानी डालेंगे उसके अंदर, तो वो CaCN2 प्लस साइनामाइड NH2CN में बदल जाएगा, और इसमें जब पानी डालेंगे दोबारा से उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे साइनामाइड का, तो यूरिया मिलेगा, और यूरिया सबको पता है बहुत अच्छा फर्टिलाइजर की तरह यूज़ होता है वो, तो इसी तरह से CaCN2 एक फर्टिलाइजर की तरह ऐड करता है, ठीक है। और नाइट्रोजन का यूज़ है कि वो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, हाँ यहाँ पे आर्गन को भी हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में, और नाइट्रोजन लिक्विड स्टेट में बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के काम आता है, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के काम आता है, और यहाँ तक कि क्रायो सर्जरी में भी काम आता है। क्रायो सर्जरी में हम लोग हीलियम नहीं यूज़ कर सकते, लिक्विड हीलियम, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कूल हो जाता है और सेल्स का डेथ हो जाएगा उस टेम्परेचर पर, 4.2 केल्विन पे, तो इसीलिए हम लोग इसमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, हीलियम नहीं, ठीक है। अब अमोनिया के बारे में, अमोनिया प्रिपरेशन का पहले देखेंगे, तो अमोनिया को प्रिपेयर करने के बाद अच्छा तरीका है कि यूरिया को हाइड्रोलाइज करवा दो, यूरिया को जब तुम हाइड्रोलाइज करवाओगे तो क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट बना, वो तुरंत डिकम्पोज करके अमोनिया, वाटर और CO2 दे देगा, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, यूरिया को हाइड्रोलाइज करवाएंगे तब कार्बोनेट, और वो कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा जैसे सारे कार्बोनेट्स करते हैं NH3, H2 और CO2 में, ठीक है। और एक और अमोनियम सॉल्ट्स का प्रॉपर्टी है कि हमेशा जब भी उसमें एल्कली डालोगे कोई भी NaOH या CH2 टाइप से, तो वो डिकम्पोज करेगा। तो जैसे एक अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड में अगर हम CH2 डालते हैं तो अमोनिया, वाटर और CaCl2 मिलता है। अगर हम अमोनियम सल्फेट में NaOH डालते हैं तो NH3, वाटर और सोडियम सल्फेट मिलता है। तो कोई भी अमोनियम सॉल्ट में अगर बेस डालोगे तो अमोनिया मिलेगा। और फिर एक्स्ट्रा रिएक्शन कुछ हैं साइड में, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अमोनियम कार्बोनेट, एकदम ऊपर वाले रिएक्शन को उल्टा, अमोनिया प्लस वाटर गिव्स NH4OH दिख रहा है, CO2 प्लस वाटर गिव्स कार्बोनिक एसिड, ये एक तरीका है एक एनालॉजी कंपेयर करने के लिए बस, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, यूरिया प्लस वाटर गिव्स A, जिसमें अगर एच जी टू प्लस डालेंगे तो सी मिलेगा, और अगर ए में एन एच डालेंगे तो बी मिलेगा। तो यूरिया प्लस वाटर ऊपर देखा हाइड्रोलाइज करवा के अमोनियम कार्बोनेट मिलेगा। अमोनियम कार्बोनेट में अगर बेस डालेंगे, अमोनिया सारे सोर्स बेस डालने पे क्या देते हैं NH3, तो NH3 बनेगा बी, और सी क्या होगा मरकरी कार्बोनेट, जो एक HgCO3.HgO ब्राउन PPT होता है, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाया जाता है ये। तो ये उसका पार्ट है। अगले पेज पे आते हैं। एक और प्रिपरेशन है अमोनिया का, एक और तरीका है, डायरेक्ट तरीका, हेबर्स प्रोसेस। हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे, और उससे उसके लिए मतलब बहुत सारे कंडीशंस पर्टिकुलर यूज़ करना पड़ता है। एक तो पहला बात ये है कि इसका डेल्टा फॉर्मेशन जो है अमोनिया को नेगेटिव है, ये बात ध्यान रखने का है कि डेल्टा फॉर्मेशन इसका नेगेटिव है। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब इसमें डेल्टा अमोनिया इज अ स्टेबल कंपाउंड, दैट कैन बी सेड। ऑप्टिमम कंडीशंस इस रिएक्शन के लिए 200 ATMs एंड नियरली 700 केल्विन का टेम्परेचर, 200 ATMs का हाई प्रेशर, 700 केल्विन का मॉडरेट टेम्परेचर, और कैटलिस्ट में आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3। ये बात कॉमन है कि पहले आयरन और मॉलिब्डेनम प्रमोटर के साथ यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। NCERT के हिसाब से अब नया कैटलिस्ट जो है वो है आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3, पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, अमोनिया फॉर्म्स एच बॉन्ड्स इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है। ठीक है। ये हम लोग जैसे कि आयनाइज करता है, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेस बट इट इज़ क्वाइट बेसिक। NH3 गैस को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो NH4+ + OH- आयन्स में टूट जाएगा। इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट्स विद एसिड्स जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, क्योंकि वो बेस की तरह ऐड करता है। इट प्रेसिपिटेट्स हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये प्रॉपर्टी अमोनिया का काफ़ी यूजफुल होता है मेटल्स को आइडेंटिफाई करने में। क्या होता है इसमें देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिंक सल्फेट में जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ZnOH2 का YPPT बनता है। तो इसी तरह से अमोनिया मेटल सॉल्ट्स को प्रेसिपिटेट करवा दिया, मेटल हाइड्रोक्साइड बना के प्रेसिपिटेट करवा दिया। ठीक है। इसमें जब हम लोग एक्सेस अमोनिया डालते हैं तो क्योंकि एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एक्सेस अमोनिया डालते हैं तो ZnNH3O4 बन जाता है। ठीक है। और सॉल्यूबल हो जाता है। लेकिन FeCl3 में जब हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो Fe2O3.XH2 जो कि रस्ट होता है हम लोग का, उसमें उस तरह से टूटता है वो, और NH4Cl। ठीक है। तो इस तरह से अमोनिया मेटल्स को सॉल्यूशन में से हाइड्रोक्साइड में करवा के प्रेसिपिटेट करवा देता है। ठीक है। और एक है कॉपर में जब हम लोग अमोनिया डालते हैं Cu2+ ions जो कि ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर में जब अमोनिया डालेंगे तो उसका एक कॉपर कॉम्प्लेक्स बनेगा Cu NH3O4 2+ जो कि डीप ब्लू कलर का होगा, मतलब ब्लू से डीप ब्लू हो गया वो। सिल्वर AgCl जो कि रहेगा, इससे मिला के वाइट PPT बनाता है, और AgCl में कभी AgCl तो वाइट PPT है, AgCl में अगर अमोनिया डालेंगे तो AgNH3O2 Cl बन जाएगा जो कि कलरलेस हो जाएगा, तो सॉल्यूबल हो जाएगा। तो सिल्वर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और AgCl का वो PPT डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। यूजेस ऑफ अमोनिया में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने में काफ़ी यूज़ होता है, कॉमन यूज है अमोनिया का, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट टाइप से यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 हम देखेंगे आगे कि HNO3 बनाने में कैसे काम आता है ये। और अगला, लिक्विड अमोनिया इज़ अ गुड रेफ्रिजरेंट, इट इज़ यूज इन रेफ्रिजरेटर्स एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है। तो ये था अमोनिया के बारे में। हम लोग चलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हम लोग वैलेंसी वाइज ये टेबल बनाया हुआ है, NCERT का टेबल है ये, इसमें प्रिपरेशन और कलर को सबको एक साथ किया हुआ है ताकि आप जल्दी से रिव्यू कर सकें। जैसे पहले में नाइट्रोजन का वैलेंसी है +1, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर N(NN) कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, या फिर चार्जेस को सेपरेट करके N-, N+ और O के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। N2O को प्रिपेयर करने का तरीका है, अमोनियम नाइट्रेट को NH4NO3 को हीट करो, N2O+H2O बनेगा। तो देखो, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट को हीट करते समय क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये पता करने का तरीका है कि तुम अमोनिया को जो सॉल्ट है उसमें नाइट्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो जैसे अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +1 आएगा, निकाल के देखो तो वो +1 आता है, +1 आएगा तो प्रोडक्ट होगा N2O। मान लो अगर नाइट्रोजन का 0 आता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट,
प्रोडक्ट में वही जीरो वाला बनेगा, जिससे कि नाइट्रोजन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग अमोनिया का कोई भी सॉल्ट को जब हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो पता करने का ये बेस्ट तरीका है कि एवरेज निकाल लो। अब N2O का प्रॉपर्टी क्या क्या, कि कलरलेस गैस है और न्यूट्रल है। देखो कलर के जहाँ तक बात है तो नाइट्रोजन का दो ही कंपाउंड में कलर दिख रहा है हम लोग को पूरे टेबल में, एक तो N2O3 जो कि ब्लू सॉलिड है और एक NO2 जो कि ब्राउन गैस है, बाकी सब कलरलेस है। ठीक है, ये दो चीज़ बस तुरंत याद हो जाता है, N2O3 ब्लू सॉलिड है और NO2 ब्राउन गैस है। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO बनाने का तरीका है जो ब्राउन रिंग टेस्ट का जो रिएक्शन दिया हुआ है, जो रिएक्शन है ये ब्राउन रिंग टेस्ट वाला रिएक्शन है, इसमें NO आयन बनता है वही NO के फॉर्म में निकल जाता है। NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो ये रिएक्शन दिख रहा है यहाँ पर, और फिर इसके बाद इसका भी वही प्रॉपर्टी, कलरलेस गैस है, न्यूट्रल, ये भी कलरलेस है, ये भी न्यूट्रल है। देखो नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं, चार को छोड़ के, ये बात याद रख लो, चार नॉन मेटल ऑक्साइड्स के अलावा सारे तुम्हारे एसिडिक होते हैं। तो वो चार कौन कौन से, नौ को नाश हुआ, ऐसे वी कैन लर्न दैट, नौ को नाश हुआ, NO, CO, N2O, NH2O, NO, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। ये चार ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, जो कि एसिडिक नहीं होते हैं। तो इनके अलावा बस ये याद रख लो, तो बाकी समय एसिडिक बैठा सकते हो। ठीक है, अगला वाला में चलते हैं, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। हाँ, ये बात है कि सबके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कैसे बनाना है और याद रहना चाहिए। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, दिख रहा है एक तरफ दो ऑक्सीजन एक तरफ एक ही ऑक्सीजन है। इसको बनाने का तरीका है NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और N2O4 को ये सब मिला के जब हीट करेंगे 250 केल्विन पे तो N2O3 मिलेगा हम लोग को। NO और N2O4 को जब 250 केल्विन पे हीट करेंगे तो मिलेगा N2O3। N2O3 अभी याद करवाया था, एक ब्लू सॉलिड होता है, ब्लू सॉलिड काफ़ी अच्छा दिखता है, ब्लू सॉलिड और एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि वो नॉन मेटल ऑक्साइड है और वो NO, CO, N2O या H2O में से नहीं है। ठीक है, अब आता है अगला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। NO2 भी एक और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखता है ऊपर, इसीलिए ये कोल्ड टेम्परेचर्स में डाइमराइज करके N2O4 भी बना लेता है कभी कभी, ताकि वो पेयर अप हो जाए। NO2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसमें उसमें कलर होता है, ब्राउन कलर का होता है ये गैस, ये बहुत कॉमन है, लेबोरेटरी में देखा है। तो इसको प्रिपेयर करने का तरीका है, नाइट्रेट्स को हीट करो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम के अलावा, जो मतलब फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट्स के अलावा बाकी सारी नाइट्रेट्स डिकम्पोज करके ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में जैसे लेड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो PbO, O2 और साथ में NO2 मिला, ये NO2 गैस ब्राउन कलर का होगा और एसिडिक होता है। ठीक है, अगला आता है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, मतलब जो कि इसी का NO2 का डाइमर है, इसमें और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है, ये इसका और इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया दूसरे NO2 के साथ और मिला के बना लिया N2O4, ये सिमेट्रिकल स्पीशीज है, कुछ नहीं करना है इसमें, दो NO2 कूल हुआ तो N2O4 बन गया, मान लो N2O4 को हीट करते हो तो वो बॉन्ड टूट जाएगा तो दो NO2 बन जाएगा। N2O4 इज कलरलेस, इट कैन इज ए सॉलिड लिक्विड दोनों टाइप से है लेकिन कलरलेस है, बात याद रखने का है। NO2 ब्राउन होता है लेकिन उसका डाइमर कलरलेस होता है और ये भी एसिडिक है क्योंकि ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है। डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड यानी N2O5 ये भी एक सिमेट्रिकल स्पीशीज है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ओ बीच में है, एक ओ इसमें बीच में है। ठीक है, इसको बनाने का तरीका है कि HNO3 में P4O10 यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जहाँ जहाँ जिन कंपाउंड में फॉस्फोरस +5 के स्टेट में होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ये HNO3 को डिहाइड्रेट कर देगा। अब HNO3 को डिहाइड्रेट कैसे करवाएं, उसमें से सो 2 से मल्टीप्लाई करो और उसका पानी निकाल दो, H2 हटा दो, HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, H2N2O6, उसमें से H2O हटा दो तो बचा N2O5। किसी भी कंपाउंड को अगर डिहाइड्रेट करवाना है तुमको उसमें से H2O का एक मोल हटाना होगा, यहाँ पे हम लोग बस एक ही हाइड्रोजन है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर H2O हटा दिए, प्रोडक्ट क्या बना N2O5। और इधर हम लोग को मिलता है HPO3N, वो N यहाँ पे 4 के बराबर है, मतलब वो डिपेंड कर सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये साइड में स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रोडक्ट है इसका। याद रखने का तरीका है, फॉस्फोरस +5 से +5 में गया, नाइट्रोजन +5 से +5 में गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड N2O5 बना सकते हैं इसे HNO3 को डिहाइड्रेट करवा के P4O10 से। P4 का क्या प्रोडक्ट बनता है? 4HPO3, क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनाने का तरीका है, पहले हम लोग उसका प्रिपरेशन में देखें। तो NaNO3 प्लस H2SO4 NaHSO4 प्लस HNO3 लैबोरेटरी मेथड है, मतलब सोडियम नाइट्रेट में सल्फ्यूरिक एसिड डालो और तुमको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। जो कमर्शियल प्रोसेस है ऑस्वर्ल प्रोसेस के हिसाब से हम लोग इसमें जो पहले हमने अमोनिया के यूजेस में पढ़ा था कि इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर HNO3, तो वह देखते कैसे होता है। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, अमोनिया का कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसको ऑक्सीडाइज करवा के एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनवाना। तो अमोनिया को जब हम लोग कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं प्लैटिनम या रोडियम गैस पे, तो वो NO बनाता है। NO, ये बात याद रखने का, NO बनाता है, NO2 नहीं बनाता है, वो NO बनाता है। NO फिर फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बना देता है। तो NH3 ने पहले NO बनाया, NO ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बनाया। वही NO2 जब पानी में मिलाया जाएगा तो वो HNO3 प्लस HNO2 बनाएगा। ये पता करने का आसान तरीका है, NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नाइट्रोजन का +4। तो पानी में मिलाएंगे तो उसका दो प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए जिसका एवरेज हो 4। HNO3 में कितना है? 5। HNO2 में कितना है? 3। तो एवरेज कितना हुआ? 4। तो हम लोग को ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं तुरंत कि कौन सा ऑक्सी एसिड बनने वाला है जब पानी डालते हैं। तो NO2 में जब H2O डालेंगे तो HNO3 और HNO2 बनेगा। अब वही HNO2 डिस्प्रॉप करके HNO3 प्लस NO, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि +1 से +4 तक का सारा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रॉप करता है। तो HNO2 बन जाता है HNO3 और NO। ओवरऑल जो सबको ऐड करेंगे तो हम लोग को नेट रिएक्शन मिलता है NO2 प्लस H2O गिव्स HNO3 प्लस NO। और ये जो NO बना, ये NO जाके रिसाइकल होता है ऊपर, वापस ऊपर वाले स्टेप से नीचे आता है, NO2 बनता है, फिर NO2 को पानी में मिलाते हैं, फिर HNO2 और HNO3 बनता है, HNO2 फिर डिकम्पोज करता है, HNO3 और NO बन जाता है, तो ऐसे करके होता है। अब जो पहला रिएक्शन है NH3 प्लस O2 जिसमें प्लैटिनम और रोडियम गैस यूज़ करते हैं, उसमें पहले प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस को यूज़ किया जाता था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और इसमें जो HNO3 बन रहा है ये 68% बाई मास तक कंसनट्रेटेड हो सकता है। अब सवाल है 68 तक ही क्यों, उससे ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि 68% पे ये एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेता है, जो कि सॉल्यूशन में पड़ा होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है। इसके आगे हीट करोगे तो पानी के साथ नाइट्रिक एसिड सेम प्रोपोर्शन में उड़ जाएगा, तो कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा और नाइट्रिक एसिड 68% ही बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता प्योर। उसको अगर करना है 68% ज़्यादा प्योर करना है तो बॉयल किए बिना उसका पानी हटाना होगा, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना होगा। डिहाइड्रेटिंग क्या है अपने पास? H2SO4, कॉन्क H2SO4। तो हम लोग उसमें कॉन्क H2SO4 डालेंगे जिससे वो 98% तक अच्छा खासा प्योरीफाई हो जाता है। लेकिन जब नॉर्मली हम लोग बनाते हैं कितना तक है? 68%। क्यों? क्योंकि वो एक एसोट्रोपिक मिक्सचर बना लेता है उस पॉइंट पर। पहले पेज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड बट इट बिकम्स पेल येलो ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ NO2। उसके अंदर NO2 रहता है कुछ डिसॉल्व, उसके कारण वो कभी कभी येलो टेंज ले लेता है, नहीं तो जनरली तो कलरलेस ही रहता है। इट इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगला पॉइंट HNO3 प्लस H2O जो इसका आयनाइजेशन वाला पार्ट है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H3O+ प्लस NO3 में टूटता है। HNO3 का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, मतलब HNO3 जब रिएक्ट करता है अलग अलग मेटल्स के साथ तो वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाता है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जब कॉन्क देखो लिखा हुआ है मेटल्स अबव PB, तो लेड के ऊपर जो मेटल है एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स का, उन मेटल्स के साथ जब HNO3 रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में तो वो +4 वाला ऑक्साइड बनाता है, यानी NO2 बनाता है। जब डाइल्यूट में करता है तो +1 वाला बनाता है, जैसे कि N2O मेटल्स अब PB के लिए। और जब वेरी डाइल्यूट हो जाएगा तो -3 यानी कि अमोनिया बनाएगा वो। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है ये वाला। इसमें यही है कि अबव PB जो भी मेटल्स हैं उनमें +4, 1 और -3 के ऑर्डर में ऑक्साइड बनता है, 4, 1, -3, ऐसे याद रख सकते हैं। और मेटल्स बिलो PB में 420, 420, 0 का मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन बन रहा है, 0 का मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है, 4-2 का काटा। तो 4 कॉन्सेंट्रेटेड पे +4 वाला बनेगा मेटल्स अब PB में, डाइल्यूट रिलेटिवली डाइल्यूट पे प्लस वन बनेगा N2O और वेरी डाइल्यूट पे NH3 बनेगा। देखिए मेटल्स बिलो PB में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड SNO3 यूज़ करेंगे तो NO2 बनेगा, डाइल्यूट रिलेटिवली डाइल्यूट यूज़ करेंगे तो NO बनेगा, और वेरी डाइल्यूट यूज़ करेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि डिसॉल्व नहीं करते कॉन्केच NO3 में, क्योंकि उन पर पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड बन जाता है, उन्हीं का ऑक्साइड उनके ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, वो आगे रिएक्ट नहीं कर पाते। तो वो मेटल्स हैं आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल। याद करने का तरीका आसान सा है, फिर आलू कड़ी कोई नहीं, ठीक है, फिर आलू कड़ी कोई नहीं, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल, ये डिसॉल्व नहीं करते HNO3 में, कॉन्केच NO3 में, फिर आलू कड़ी कोई नहीं। अब इसके HNO3 के कुछ ऑक्सीडेशन के रिएक्शन यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है। देखो एक ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है कि आयोडीन के अलावा बाकी सब को नाइट्रोजन HNO3 ने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर दिया है। I2 में HIO3 बन रहा है, जबकि हाईएस्ट का HIO4 बन सकता था लेकिन नहीं बन रहा। यह बात याद रखने का है बस, इसमें HIO3 बनता है, सल्फर के साथ H2SO4 बन रहा है, कार्बन के साथ CO2 बन रहा है और फॉस्फोरस के साथ H3PO4 बन रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव हो रहा है लेकिन I2 में नहीं हो रहा है। इसका एक और रिएक्शन है जो कि नाइट्रेट आयन को पहचानने में असल में काम आता है, ब्राउन रिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, काफ़ी फेमस सा टेस्ट है। तो उसमें उसका रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, रिएक्शन गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। नाइट्रेट में Fe+2 आयन जब आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+2 आयन और वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में NO मिलता है हम लोग को। वो NO आयरन कॉम्प्लेक्स जो बनता है Fe H2O6 उसमें मिल जाता है Fe H2O5 NO बनाता है, वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, उसके कारण एक ब्राउन रिंग बन जाता है इंटरफेस पे FeSO4 और H2SO4 के। ये टेस्ट था। नाइट्रिक एसिड का यूज़ काफ़ी यूजेज है, दिस इज मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव्स, पायरोटेक्निक्स, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलविन, रेंज ऑफ कंपाउंड्स बहुत सारे नाइट्रोजन वाले इसे बनाए जा सकते हैं। दिस इज द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, एचिंग ऑफ मेटल्स एंड यूज एज ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स। बस नाम के टर्म्स है, ज़्यादा मतलब नहीं है, बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने ग्रुप 15 के लास्ट स्टेज में, काफ़ी लंबा चौड़ा ग्रुप रहा है ये, फॉस्फोरस पे अब हम लोग फॉस्फोरस और उसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फॉस्फोरस, पहला बात, फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप्स होते हैं जो हमें पढ़ना है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस के बारे में पढ़ते हैं, तो वाइट फॉस्फोरस एक ट्रांसलूसेंट वैक्सी वाइट सॉलिड होता है, ट्रांसलूसेंट वैक्सी वाइट, वाइट से नाम से सजेस्ट हो रहा है। वो पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन CH2 होता है, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है जिसके कारण वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि CH2 में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि H2O में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि CH2 में डिसॉल्व हो जाते हैं। वाइट फॉस्फोरस केमिल्यूमिनेसेंस या फॉस्फोल्यूमिनेसेंस शो करता है, इसका मतलब है कि अंधेरे में वो जलता है, एयर में इग्नाइट हो जाता है खुद से, काफ़ी फ्लेमेबल है। इसका एक रिएक्शन दिया हुआ है नीचे जो कि फॉस्फीन बनाने में काम आता है, हमने पहले भी पढ़ा था। ये एकमात्र रिएक्शन जिसमें कि +5 और -3 में नहीं टूटता फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में जब बेस डालेंगे तो फॉस्फीन और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड NaH2PO2, रिपीट, PS3 + NaH2PO2 बनता है। ये बहुत ही कम स्टेबल होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें काफ़ी एंगुलर स्ट्रेन है इसका। हाँ, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PPPP का एक टेट्राहेड्रल टाइप से समझो, और उसमें बॉन्ड्स आमने सामने के भी जुड़े हुए हैं, ये याद रखना है, और एंगल है 60 डिग्री, तो काफ़ी एंगुलर स्ट्रेन है 60 डिग्री होने के कारण, तो इसलिए बहुत कम स्टेबल होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। P4O2 के साथ रिएक्ट करके P4O10 बना लेता है, डेंस वाइट फ्यूम्स ऑब्टेन होते हैं और ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अब रेड फॉस्फोरस पे आते हैं, पहले तो रेड फॉस्फोरस बनाएं कैसे, तो रेड फॉस्फोरस बनाते हैं P4 को, वाइट P4 को, वाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके, तो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। नाम रेड फॉस्फोरस है, इसका कलर आयरन ग्रे लस्टर इसमें, ठीक है, आयरन ग्रे लस्टर, ठीक है। इट इज़ ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस, यह मतलब कि एक कॉन्ट्रास्ट आता है, वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस था, रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस है। हालांकि रेड फॉस्फोरस अब किसी में सॉल्युबल नहीं है, H2O में भी सॉल्युबल नहीं है, CS2 में भी सॉल्युबल नहीं है, कार्बन डाइसल्फाइड में भी सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था, ठीक है। रेड फॉस्फोरस कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव होता है और डार्क में ग्लो नहीं करता, केमिलुमिनेसेंस नहीं दिखाता, मतलब केमिलुमिनेसेंस सिर्फ वाइट फॉस्फोरस ही दिखाता है। इसका स्ट्रक्चर बगल में बनाया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर वैसे ही पॉलीमेरिक टाइप का होता है, ऐसा लगता है कि मानो वाइट फॉस्फोरस के पॉलीमर बना दिया गया हो। चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रा लिंक टुगेदर, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर इसका दिखता है। हाँ, तो ब्लैक फॉस्फोरस बनाने के लिए हम रेड फॉस्फोरस को एक सील ट्यूब में 803 केल्विन पे हीट करते हैं, तो अल्फा ब्लैक बनता है। असल में ब्लैक के दो टाइप्स हमें स्टडी करना है यहाँ पे, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। तो अल्फा ब्लैक बनाने का प्रोसेस है, रेड फॉस्फोरस को सील ट्यूब में 803 केल्विन पे हीट करो तो बनेगा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। जब व्हाइट फॉस्फोरस को हम लोग हाई प्रेशर पे 473 केल्विन पे हीट करेंगे तो बीटा ब्लैक बनेगा। याद करने का तरीका, रेड से अल्फा, वाइट से बीटा, रेड से अल्फा, वाइट से बीटा, ठीक है। अब हम लोग अल्फा ब्लैक के बारे में अगर कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो इट कैन बी सबलाइम, इट इज ओपेक, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल इन स्ट्रक्चर। सब थोड़े से एडवांस टाइप्स हैं, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। इट कैन बी सबलाइंड, बस याद रखो, मोनोक्लोनिक और रोम्बोहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, खुद से जलने नहीं लगता खड़े खड़े, जैसे कि वाइट फॉस्फोरस जलने लग जाता था तो वो नहीं जलता। लेकिन और बीटा ब्लैक का जो प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये भी 673 केल्विन तक नहीं जलता, उसके बाद जलता है, उसके बाद इट इज़ फ्लेमेबल, लेकिन 673 केल्विन तक नहीं जलता ये भी। अब एक छोटा सा रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है, P4 प्लस NaOH गिव्स PS3। जब फॉस्फीन को काफ़ी दिन तक पानी में रखते हैं तो वो रेड फॉस्फोरस बना देता है। देखो, फॉस्फीन के बारे में अभी पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। और P4 को डायरेक्ट हम लोग रेड भी बना सकते, कैसे, ऊपर पढ़ा 300 सेल्सियस पे हीट करके। और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड तो पीछे बना हुआ है, NaH2PO2, वो भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब फॉस्फीन पे आते हैं, तो फॉस्फीन को लोग बोलते हैं सड़ी हुई मछली, क्योंकि उसका स्मेल वैसा ही होता है। अभी सड़ी हुई मछली को प्रिपेयर करने का तरीका पहले ये देखते हैं, Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड डी फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड को जब हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन बनेगा। द सेम वे कैल्शियम फॉस्फाइड पे जब HCl का एक्शन होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस फॉस्फीन बनेगा, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ लैब में इसको बनाने का तरीका, जो बहुत बार रिएक्शन अब तक आ चुका है, वाइट फॉस्फोरस में NaOH और वाटर डालो तो उनको बनेगा क्या, फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2, ठीक है। फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ है कि जब प्योर होता है तो ये नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, जब प्योर एकदम प्योर PS3 होगा तो नॉन इन्फ्लेमेबल होगा, लेकिन इसके अंदर काफ़ी टाइम इम्प्योरिटीज़ आ जाती है P2H4 या फिर P4 वेपर्स का, P2H4 जिसको हम लोग डाइफॉस्फीन बोलते हैं, ये मार्शी एरिया में जो विलोविस्प होता है इसी कारण होता है, P2H4 के कारण, डाइफॉस्फीन के कारण, ठीक है। ये दूसरे लैब मेथड में जब प्रिपेयर करते हैं PS3 को तो P2H4 और P4 का कभी कभी इम्प्योरिटीज़ आ जाता है। तो इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि PH4 को, मतलब जो सॉरी जो बना हमारा प्रोडक्ट का पार्ट है उसको हम लोग HI में एड्जॉर्ब करवा दें, क्या करवा दें, HI में एड्जॉर्ब करवा दें, उसमें PH4I बनता है। अब PH4I क्योंकि एक आयनिक सॉलिड है तो फिर वो बचा रहता है, बाकी सबको हम लोग हीट करके उड़ा सकते हैं, ठीक है। अब PH4I में से हम लोग को वापस फॉस्फीन चाहिए, तो PH4I में हम लोग सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालें, पोटेशियम आयोडाइड बना और PH3 हम लोग अपना वापस मिल गया। PH4I एक आयनिक सॉलिड होगा तो इसलिए वो बचा रहेगा, जबकि बाकी इम्प्योरिटीज़ विल बी इवेपोरेटेड ऑफ। उसके बाद हम लोग उसमें KOH डालेंगे तो PH3 हम लोग अपना प्योर वाला मिल जाएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन का बात करें तो फॉस्फीन का प्रॉपर्टी कलरलेस गैस एंड रॉटन फिश स्मेल, जैसे पहले बताया था सड़ी हुई मछली, एंड इट इज़ हाईली पॉइजनस, ठीक है। इट एक्सप्लोर्स इन ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके प्रेजेंस में रहा तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, PH3 को जब बहुत दिनों तक पानी में छोड़ दिया जाता है तो रेड फॉस्फोरस बनता है, याद करने का तरीका, सड़ी हुई मछली पानी के अंदर पानी को पूरा लाल कर देती है, रेड फॉस्फोरस बन गया, सड़ी हुई मछली से रेड फॉस्फोरस बन गया, Fe+H2। ठीक है, एक अगला रिएक्शन जो कि दिखाता है कि अब आपको ड्रैगो रूल पता हो तो PS3 का जो लोन पेयर होता है वो प्योर पी ऑर्बिटल में होता है, जबकि NS3 का जो लोन पेयर होता है वो SP3 ऑर्बिटल में होता है। ये ड्रैगो रूल एक कंसेप्ट है, इसके कारण PS3 का बॉन्ड एंगल सब 90 डिग्रीज के क्लोज होता है, जबकि NS3 में 109 डिग्रीज 28 मिनट्स के आसपास होता है, टेट्राहेड्रल एंगल्स होता है, और PS3 में हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए एप्लीकेबल नहीं होता है ड्रैगो रूल के कारण। जो कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जब कॉपर सल्फेट PS3 से रिएक्ट करता है तो फॉस्फोरस अपना लोन पेयर देने को तैयार नहीं होता है और वो Cu3P2 बना लेकर कॉपर फॉस्फाइड बना लेता है लेकिन लोन पेयर नहीं देता है, जबकि अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होता है कॉपर सल्फेट का तो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब अमोनिया अपना लोन पेयर दे देता है कॉपर को लेकिन फॉस्फोरस नहीं करेगा, तो सड़ी हुई मछली ना लोन पेयर देगी बस मर जाएगी, लोन पेयर तो नहीं दिया मर गई। सेम वे HgCl2 में जब PS3 डालेंगे तो लोन पेयर नहीं देगा और Hg3P2 बन जाएगा और HCl बनेगा। तो PS3 के बाद याद रखने का, उसका लोन पेयर प्योर पी ऑर्बिटल में होता है, SP3 में नहीं होता, वो अपना लोन पेयर कतई डोनेट नहीं करता। ठीक है, PS3 का एसिडिक प्रॉपर्टीज का बात करें तो वीकली बेसिक होता है, बहुत ही वीकली बेसिक, एसिड के साथ रिएक्ट करके जैसे ऊपर देखा HI के साथ रिएक्ट करके PH4I बनाया था, वैसे PS3 HBr के साथ रिएक्ट करके PH4Br बना देगा। ये हो गया, इसका यूज़ होता है होम सिग्नल में, जो कि कोई अगर सी में खो जाता है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। कैल्शियम कंटेनर्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड आर केप्ट व्हेन देयर, मतलब उसको उन्हें तोड़ा जाता है और पानी में फेंक दिया जाता है, जो पानी में फेंकता है पानी से रिएक्ट करके फॉस्फीन गैस बनता है, फॉस्फीन क्योंकि इन्फ्लेमेबल होता है वो जलने लग जाता है तो उससे लाइट बनता है जो कि हेल्प का एक सिग्नल है, इसको होम सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, और ये स्मोक स्क्रीन का भी काम करता है, स्मोक स्क्रीन भी बना देता है साथ साथ। हम लोग फॉस्फीन के बारे में हो गया, फॉस्फोरस हैलाइड्स पे चलते हैं अगले पेज पे, फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो पहले PCl3 को प्रिपेयर करने का तरीका है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पहले तो फॉस्फोरस और क्लोरीन को डायरेक्ट कंबाइन कर दो तो PCl3 बन जाएगा, या फिर P4 को, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग हट के रिएक्शन, P4 को जब SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, तो यहाँ SOCl2 को क्या बोलेंगे, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड बनता है, उससे थायोनिल क्लोराइड है अपने पास P4 और थायोनिल क्लोराइड को रिएक्ट करवा के PCl3 SO2, ये एक प्रोडक्ट है S2Cl2, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम आगे बाकी ग्रुप क्लोरीन वाले ग्रुप में इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये S2Cl2 का स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का होता था याद है, उसी टाइप से S2Cl2 का ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, PCl3 एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक नहीं है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, तो कोवेलेंट सॉलिड है तो इसीलिए वो कलरलेस ऑयली लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड, इट हाइड्रोलाइजेस इन मॉइस्चर, पानी में मॉइस्चर में हाइड्रोलाइज कर जाता है PCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO3 और HCl बनाता है। ठीक है, H3PO3 और HCl एसिटिक एसिड के साथ PCl3 रिएक्ट करते हैं, ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, काफ़ी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, कहीं भी Cl जोड़ना हो लगा दो PCl3, तो CH3COH में PCl3 डालेंगे तो CH3COCl और H3PO3 बनता है। उसी तरह जब अल्कोहल में डालते हैं C2H5OH में PCl3 तो C2H5Cl प्लस H3PO3, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में क्लोरीन जोड़ने के लिए PCl3 को यूज़ करते हैं। PCl5 प्रिपेयर करने का तरीका है, तो PCl5 का प्रिपरेशन में पहले तो ये है कि P4 को COCl2 के साथ ऐड करवाएंगे तो PCl5 बन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन प्रोवाइड करेगा उसको और वो PCl5 बन जाएगा, ड्राई होना चाहिए COCl2। ठीक है, तो P4 वाटर के साथ ऐड कर जाएगा। अब P4 प्लस SO2Cl2, ये दूसरा, अब ये ऊपर वैसे कंपेयर करो, ऊपर में था P4, ऊपर वाले में PCl3 में था P4 प्लस SOCl2, यहाँ पे P4 प्लस SO2Cl2, ये डिफरेंस याद रखना है। इसमें है PCl5 में क्या है SO2Cl2, क्या फर्क बनता है, PCl5 प्लस SO2 सिंपल प्रोडक्ट्स, नो दिक्कत। लेकिन PCl3 में एक अजीब सा प्रोडक्ट बन रहा था अपना S2Cl2, तो वो भी ध्यान में रखना है कि वो S2Cl2 वहाँ पे बन रहा है। PCl5 का जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो असल में सॉलिड फॉर्म में आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। PCl4 प्लस PCl6 माइनस में एग्जिस्ट करता है। वो कैसे एग्जिस्ट करता है? आयनिक सॉलिड एक तरह से बोल सकते हो उसको, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, इसलिए इसमें कलर भी होता है। PCl3 क्या था? कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड था, तो कलर नहीं था उसके अंदर, कलरलेस था, ऑयली लिक्विड। जबकि PCl5 आयनिक फॉर्म में होने के कारण उसमें कलर भी है और सॉलिड भी है, येलोइश वाइट पाउडर, जैसे येलोइश वाइट पाउडर। और जब हाइड्रोलिसिस होता है इसका, तो फॉस्फोरस +5 से +5 वाला ऑक्सी एसिड बना देता है। ठीक है, तो पहले तो POCl3 बनता है, क्योंकि POCl3 काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है, तो पहले POCl3 बनता है। फर्दर हाइड्रोलाइज होकर वो सिर्फ PO4 बन जाता है, +5 वाला जो फॉस्फोरिक एसिड है वो बन जाता है। याद, हाइड्रोलिसिस में कभी भी ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं होगा। ऊपर भी PCl3 था तो वो H3PO3 बना, जहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +3 ही है। नीचे PCl5 से H3PO4 बना, फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट +5 ही रहा। ठीक है, जब इसको हीट करते हैं तो ये सब्लाइम हो जाता है, और फिर बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाएगा। PCl5 हीट करने पे PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। ठीक है, अगला, ये भी क्लोरीन प्रोवाइडर की तरह काम करता है। C2H5OH में PCl5 डालेंगे तो C2H5Cl प्लस POCl3, अगेन POCl3 इज़ वेरी स्टेबल तो बनता ही रहता है वो, POCl3 प्लस HCl। और एसिटिक एसिड में भी जब PCl5 डालेंगे CH3COOH में तो CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा। इसमें जब फाइनली डिवाइडेड मेटल्स, जब मेटल्स को PCl5 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्लोराइड बनता है। फिर से वही अपना क्लोरीन डोनेटिंग टेंडेंसी दिखा रहा है PCl5, तो Ag प्लस PCl5 फॉर्म्स AgCl प्लस PCl3, और टिन प्लस PCl5 फॉर्म्स SnCl4 प्लस PCl3। SnCl4 के नीचे अंडरलाइन है क्योंकि +4 वाला प्रोडक्ट है, लोगों को लगता है +2 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, लेकिन नहीं, यहाँ पे +4 ही बनता है। ठीक है, +4 बनता है। इन गैस एंड लिक्विड इट हैज TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। गैसेस और लिक्विड स्टेट में तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है, सॉलिड स्टेट में ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ज्योमेट्री दोनों कैटायन और एनायन का अलग अलग होता है। सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया जाता है ये। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट एंड 2 एक्चुअल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, ये NCERT का एक लाइन है। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट व्हाइल 2 एक्चुअल बॉन्ड्स आर लॉन्गर ड्यू टू द फैक्ट दैट द एक्चुअल बॉन्ड्स सफर मोर रिपल्शन एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स। इस लाइन का सेंस मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे हाइब्रिडाइजेशन समझ में आता है, ये क्या बोलना चाहता है नहीं पता, लेकिन क्योंकि NCERT का लाइन है दैट कोट हो सकता है एग्जाम्स में, तो इसीलिए बात याद रखने का है। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होता है, 2 एक्चुअल बॉन्ड्स लॉन्ग होते हैं, ये पता है क्यों होता है, कि एक्चुअल बॉन्ड्स ज़्यादा रिपल्शन फील करता है किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर से। ठीक है, बस याद रखने लाइन। अब हम लोग ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबका स्ट्रक्चर पता हो। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया नहीं है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आप NCERT रेफर कर सकते हैं, आप बुक्स रेफर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर काफ़ी ज़रूरी है, सबका बनाना काफ़ी आसान होता है, एक बार समझ जाएंगे तो बन जाएगा। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसको फॉस्फीनिक एसिड बोलते हैं, वो कैसे बनाया जाता है? वाइट फॉस्फोरस में एल्कली डालेंगे तो H3PO2 बनता है। क्या बनता है? H3PO2। वाइट फॉस्फोरस प्लस एल्कली गिव्स H3PO2 विच इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस और फॉस्फीनिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस और फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक फॉस्फीनिक डिफरेंस याद रहना चाहिए, फॉस्फोनिक फॉस्फीनिक। ठीक है, फॉस्फीनिक में +1 में होता है फॉस्फोरस। ठीक है, और फॉस्फोनिक में कितने में होता है? +3 में, फॉस्फोनिक में होता है +3 में। पाइरोफॉस्फोरस, पाइरो किसी भी एसिड का बनाना बहुत आसान है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से वाटर का एक मोल हटा दो। एसिड H3PO3 का जैसे बनाना है, ये पाइरोफॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस एसिड का पाइरोफॉर्म। फॉस्फोरस एसिड अभी पढ़ा था, ऑर्थोफॉस्फोरस का मतलब भी फॉस्फोरस होता है, तो H3PO3 उसको डबल करो, H6P2O6 उसमें से H2 हटा दो, तो क्या बचा? H4P2O5। हम लोग को मिल गया पाइरोफॉस्फोरस एसिड। हाइपरफॉस्फोरिक एसिड, हाइपो का इसमें मतलब ऑक्सीजन कम करना, तो किसी भी एक एसिड का फॉस्फोरिक एसिड लिखा हुआ है, तो एक एसिड का हाइपो बनाने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसका पायरो फॉर्म बनाओ और फिर उसमें से एक ऑक्सीजन हटा दो। तो हम लोग अभी इसको देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बगल में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जो कि फॉस्फोरिक एसिड जो हमें पता है H3PO4, H3PO4 को डबल करो H6P2O8, ठीक है, इसमें से वाटर हटा दो H4P2O6, बचा H4P2O6, आ गया आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन हटा देंगे तो H4P2O5 जो कि अपना हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, रेड P4+ एल्कली के साथ इसका। हाँ, इसका मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं हम लोग, पिछले 2 से मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, वापस एक बार याद करते हैं। हाइपोफॉस्फोरस का मैन्युफैक्चरिंग वाइट P4+ एल्कली, ऑर्थोफॉस्फोरस में P2O3 को हाइड्रोलाइज करवाएंगे, +3 का एसिड बनाना है तो +3 के ऑक्साइड को हाइड्रोलाइसिस करवा दो तो बन जाएगा। पाइरोफॉस्फोरस बनाने के लिए PCl3 में H3PO3 ऐड करते हैं, PCl3 में H3PO3 ऐड करते हैं, पाइरोफॉस्फोरस बनता है। हाइपोफॉस्फोरिक रेड फॉस्फोरस में एल्कली ऐड करेंगे तो हाइपोफॉस्फोरिक बनेगा, वाइट P4 में एल्कली ऐड करेंगे तो हाइपोफॉस्फोरस बनेगा, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड बनाने का तरीका, P4O10 जो कि +5 वाला ऑक्साइड है उसका हाइड्रोलिसिस करवा दो तो H3PO4 बन जाएगा, ठीक है, एक सिमेट्री देखे, इसलिए मैंने वैसे अरेंज किया कि ऊपर नीचे एक सिमेट्री देखे। पाइरोफॉस्फोरिक एसिड बनाने का तरीका, 2 से मल्टीप्लाई करो फॉस्फोरिक को, वाटर हटा दो, बन जाएगा H4P2O7, ठीक है, और जब इसी पायरो से एक ऑक्सीजन हटा दोगे तो हाइपो बन जाएगा, जो पहले दिया हुआ है 4th नंबर पर, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो किसी भी एक एसिड का हाइपो बनाना हो, 2 से मल्टीप्लाई करो, वाटर हटाओ, पायरो बनेगा, वो पायरो में से एक ऑक्सीजन हटा दो तो वो हाइपो बन जाएगा, ठीक है। अगला मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो ये काफ़ी कॉमन है, H3PO3 प्लस ब्रोमीन इन सील ट्यूब, ये रिएक्शन याद रखना है, H3PO3 प्लस ब्रोमीन इन सील ट्यूब, फॉस्फोरिक एसिड को ब्रोमीन के साथ सील ट्यूब में डालते हैं तो HPO3 एन टाइम्स एक पॉलीमर टाइप से बनता है, ठीक है। एसिड्स इन +3 स्टेट डिस्प्रॉप, पढ़ा हुआ था कि +5 और -3 में डिस्प्रॉप करता है, तो H3PO3, H3PO4 और PH3 में डिस्प्रॉप कर जाएगा। H3PO3 का एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है साइड में, हीट करने पे H3PO3, H3PO4 और PH3 में डिस्प्रॉप कर रहा है, अभी पढ़ा, PCl3 डालने पे H4P2O5 बन जाएगा, पाइरोफॉस्फोरस एसिड, क्या बनता है, पाइरोफॉस्फोरस एसिड, अभी पढ़ा था उसके प्रिपरेशन में, PCl3 प्लस H3PO3 फॉर्म्स H4P2O5। और फॉस्फोरिक एसिड को जब हम लोग फॉस्फोनिक एसिड, H3PO3 इज फॉस्फोनिक एंड H3PO4 इज फॉस्फोरिक, ऐसा कन्फ्यूजिंग है, 3-4 बार पढ़ेंगे हो जाएगा, मुझे भी आपको भी, ठीक है। तो फॉस्फोनिक होता है H3PO3 और फॉस्फोरिक होता है H3PO4। तो H3PO3 जब हीट करेंगे तो H3PO4 और PH3 में टूट जाएगा, PCl3 डालेंगे तो H4P2O5 बन जाएगा, और ब्रोमीन इन सील ट्यूब में जब डालेंगे तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जिसको HPO3N बोलते हैं, जो एन का वैल्यू ले सकता है अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग प्रोडक्ट्स। एसिड्स हैविंग pH बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है कि जिन एसिड्स में pH बॉन्ड होगा, मतलब फॉस्फोरस डायरेक्टली H से लिंक्ड होगा, आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो देखेंगे किसी में POH से लिंक्ड है, किसी में pH से लिंक्ड है, तो जिसमें pH से लिंक्ड होगा उतना वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, जितने ज़्यादा pH बॉन्ड उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसी के कारण H3PO2 काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट को H3PO2, H3PO2 अपना फॉस्फीनिक या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फीनिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है सिल्वर को रिड्यूस कर रहा है सिल्वर को +1 से 0 में, ठीक है, AgNO3 को वो Ag बना रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है H3PO4 में +5 बना रहा है। तो एसिड्स, जिन भी फॉस्फोरस एसिड्स में pH बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करेंगे और AgNO3 जैसे मतलब कि किसी भी मेटल को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से मेटलिक स्टेट में ले आएंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा ग्रुप 15 ख़त्म होता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ वॉइस मैसेज या फिर मैसेजेस के फॉर्म में मुझे भेजिए, मैं बताऊँगा। और आपकी कोई भी फीडबैक हो, कि मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो आप कोई भी फीडबैक हो, आपके कोई भी सजेशंस हो, तो दे आर मोस्ट वेलकम, वो मुझे आगे इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। मेरा बस एक ही एम है कि लोगों की हेल्प हो, ज़्यादातर लोग इसे समझ में, क्योंकि पी ब्लॉक काफ़ी एक पढ़ने वाला चैप्टर है और लोग इसे अकेले पढ़ने में मतलब बोर भी हो जाते हैं, समझ भी नहीं आता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पढ़ के सुनाऊँ, ताकि लोगों जल्दी से याद हो। तो इसीलिए अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ मुझे बताएं, एंड कोई भी फीडबैक हो तो फील फ्री टू शेयर। आई होप यू एंजॉय द पॉडकास्ट। इसके आगे मैं और भी बनाऊँगा, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और काफ़ी सारे चैप्टर्स की। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं उन्हें अपलोड करता जाऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।